एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी के इस नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो खेल के मैदान से शुरू होती है पर जिंदगी के कई अहम पहलुओं को छू जाती है।
हाँ बिल्कुल, किताब का नाम है There's Always This Year on Basketball and Ascension। लेखक है हनीफ अब्दुल रकीब।
अब देखिए, नाम से लगता है कि ये सिर्फ बास्केटबॉल पर होगी, पर ऐसा है नहीं, है ना?
सही कहा, ये किताब बास्केटबॉल के इर्द गिर्द घूमती जरूर है। हाँ, खासकर महान खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स की कहानी के जरिए, लेकिन असल में ये उम्मीद, अपनी जड़ों, समुदाय से जुड़ाव और सफलता की उस मुश्किल चढ़ाई जिसे लेखक असेंशन कहते हैं, उसके बारे में है।
और इन सब में लेखक अपने निजी अनुभव भी मिलाते जाते हैं।
जी हाँ,
और यही बात इसे खास बनाती है। क्यों? ये सिर्फ स्पोर्ट्स फैंस के लिए नहीं है। मुझे लगता है ये किताब इसलिए जरूरी है क्योंकि ये उस इंसानी जज्बे की बात करती है। मतलब कैसे हम बार बार हारने या निराश होने के बावजूद उम्मीद का दामन थामे रहते हैं। वो चलो कोई नहीं, अगले साल फिर देखेंगे वाली फीलिंग, ये घर, पहचान, अपने सपनों के पीछे भागने की कहानी है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जुड़ सकते हैं।
बिल्कुल, तो आज हम कोशिश करेंगे इस किताब के गहरे विचारों को समझने की, लेब्रॉन जेम्स की कहानी इसमें इतनी अहम क्यों है ये जानने की, और ये देखने की कि बास्केटबॉल जैसा खेल हमें जिंदगी के बारे में क्या सिखा सकता है।
तो चलिए सबसे पहले लेखक से मिलते हैं, हनीफ अब्दुल रकीब। ये नाम शायद कई लोगों के लिए नया हो। ये अमेरिका के ओहायो राज्य के कोलंबस शहर से हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये कोई टिपिकल स्पोर्ट्स राइटर नहीं है।
हाँ, और यही इनकी खासियत है। अब्दुल रकीब एक कवि हैं, निबंधकार हैं और कल्चरल क्रिटिक। वो संगीत, खेल, नस्ल और अमेरिकन कल्चर के बीच के रिश्तों को बहुत गहराई से समझते हैं।
उनकी पिछली किताबें भी जैसे गो अहेड इन द रेन या ए लिटिल डेविल इन अमेरिका काफी सराही गई हैं।
हाँ, मैंने सुना है।
क्योंकि वो कल्चरल मुद्दों पर एक बहुत ही पर्सनल और दिल को छूने वाला नजरिया पेश करते हैं।
तो इस किताब के लिए उनका नजरिया इतना अनोखा क्यों है? पहली बात तो ये कि वो खुद ओहायो से हैं, उसी राज्य से जहां से लेब्रॉन जेम्स आते हैं, तो वो उस इलाके के लोगों का लेब्रॉन के साथ जो एक भावनात्मक रिश्ता है, जो उम्मीदें जुड़ी थीं, उन सबको बहुत करीब से महसूस कर सकते हैं।
सही कहा।
दूसरी बात, जैसा आपने कहा, वो एक कवि हैं, तो वो खेल को सिर्फ आंकड़ों, जीत हार के चश्मे से नहीं देखते। वो उसमें छुपी भावनाएं, उसकी खूबसूरती, उसके दर्द को महसूस करते हैं और उसे अपनी भाषा में बयान करते हैं। और तीसरी बात, वो अपनी जिंदगी के अनुभवों को, अपनी यादों को बास्केटबॉल और लेब्रॉन की कहानी के साथ बड़ी खूबसूरती से बुनते हैं। उनके लिए बास्केटबॉल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि जिंदगी, पहचान, घर और महत्वाकांक्षा जैसे बड़े सवालों से जूझने का एक जरिया है।
तो अगर इस किताब को मान लीजिए एक लाइन में समझना हो तो क्या कहेंगे?
कह सकते हैं कि उम्मीद, निराशा और इंसान के जज्बे पर एक गहरी सोच है, जिसमें बास्केटबॉल एक लेंस या आईने की तरह काम करता है। ये सिर्फ लेब्रॉन जेम्स की कहानी नहीं है, बल्कि उनके करियर के उतार चढ़ाव के जरिए लेखक घर, समुदाय, महत्वाकांक्षा और सफलता, मतलब एसेंशन के उलझे हुए रिश्तों को समझने की कोशिश करते हैं।
हाँ, और किताब का एक मुख्य आइडिया ये है कि बास्केटबॉल सीजन का जो एक चक्र होता है ना, हर साल नई उम्मीद से शुरुआत, फिर बीच का संघर्ष, हार का कड़वा घूट और फिर अगले साल फिर कोशिश करेंगे वाली भावना।
हाँ हाँ,
ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी की लय जैसी ही है।
हाँ।
हम भी तो इसी तरह उम्मीद और निराशा के दौर से गुजरते हैं, नहीं?
बिल्कुल। किताब ये भी सवाल उठाती है कि लेब्रॉन जेम्स जैसा एक बड़ा चेहरा, एक हीरो, उन लोगों और जगहों के लिए क्या मायने रखता है। उनकी पब्लिक लाइफ, उनके फैसले, उनकी जीत हार हमें अपने निजी संघर्षों और जीतों के बारे में क्या सिखा सकते हैं।
और एक बहुत जरूरी तनाव जिस पर किताब बार बार लौटती है वो है अपनी जड़ों के प्रति वफादारी और बड़ी कामयाबी हासिल करने की निजी ख्वाहिश के बीच का खिंचाव। क्योंकि अक्सर बड़ी कामयाबी पाने के लिए आपको अपनी जड़ें, अपना घर पीछे छोड़ना पड़ता है।
हाँ, उस चढ़ाई या एसेंशन की एक कीमत होती है।
सही।
किताब की बनावट भी बड़ी दिलचस्प है। लेखक ने इसे एक बास्केटबॉल मैच की तरह बांटा है, प्री गेम, चार क्वार्टर्स और पोस्ट गेम।
अच्छा।
हाँ, इसी बहाने लेब्रॉन के करियर और लेखक की जिंदगी के पड़ाव साथ साथ चलते हैं। तो चलो इसी तरह आगे बढ़ते हैं, शुरुआत प्री गेम से।
प्री गेम एक हीरो का बनना इस हिस्से में अब्दुल रकीब हमें अपने बचपन में ले जाते हैं, कोलंबस ओहायो। वो याद करते हैं कैसे पास के शहर एक्रॉन से एक टीनेज बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स की चर्चा हवा में तैरने लगी थी। ये सिर्फ एक अच्छे खिलाड़ी की बात नहीं थी, ये एक उम्मीद के जन्म लेने जैसा था।
हाँ, और लेखक यहाँ इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे समुदाय, खासकर मिडवेस्ट जैसे इलाकों में, जिन्हें लगता है कि देश उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी सारी उम्मीदें किसी एक युवा टैलेंट पर टिका देते हैं। ये सिर्फ खेल में जीत की आस नहीं होती, ये अपनी पहचान, अपनी अहमियत जताने की ख्वाहिश होती है। जैसे पूरा इलाका कह रहा हो, देखो हम भी कुछ हैं, हमारे यहाँ से भी कोई दुनिया जीत सकता है।
और इसी में वो दबाव भी है, एक अकेले लड़के पर पूरे इलाके को बचाने, उसका मान बढ़ाने का बोझ डाल दिया जाता है। लेखक इस माहौल को अपनी जवानी की यादों, अपनी उम्मीदों और डर से जोड़ते हैं। ये वो दौर है जब सपने बुने जाते हैं असलियत की ठोकर लगने से पहले।
फिर आता है पहला क्वार्टर, वादा और दबाव। ये लेब्रॉन के होम टाउन टीम क्लीवलैंड कैवेलियर्स के साथ शुरुआती सालों 2003 से 2010 का दौर है। ओहायो में जैसे जश्न का माहौल था, उनका चुना हुआ बेटा घर आ गया था उन्हें चैंपियनशिप जिताने।
इस हिस्से में फोकस उस भारी उम्मीद के बोझ पर है। क्लीवलैंड शहर दर्शकों से कोई बड़ी स्पोर्ट्स चैंपियनशिप नहीं जीता था, अब सबकी नजरें लेब्रॉन पर थीं। हर मैच, हर सीजन इसी उम्मीद और दबाव के बीच गुजरता था। ये सिर्फ खेल नहीं था, ये एक शहर का सपना था।
और इसी दौरान लेखक भी अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में कदम रख रहे थे, अपनी राह तलाश रहे थे। वो उस एहसास को समझते हैं जब आपसे बहुत उम्मीदें हों और उन्हें पूरा करने का दबाव बढ़ता जाए, चाहे वो बास्केटबॉल कोर्ट हो या जिंदगी का मैदान।
लेकिन फिर आता है वो मोड़ जिसने सबको चौंका दिया, दूसरा क्वार्टर, जुदाई और धोखा। साल 2010, लेब्रॉन ने एक लाइव टीवी शो दी डिसीजन में ऐलान किया कि वो क्लीवलैंड छोड़कर मियामी हीट टीम जा रहे हैं।
ओहां, ओहायो में इसे सिर्फ एक खिलाड़ी का टीम बदलना नहीं माना गया, इसे एक गहरे धोखे के तरह महसूस किया गया। अब्दुल रकीब उस गुस्से, उस दुख को पकड़ते हैं, लोगों का अपने हीरो की जर्सी जलाना, उसे गद्दार कहना।
हाँ, याद है मुझे।
ये दिखाता है कि लोगों का जुड़ाव कितना गहरा था और चोट भी उतनी ही गहरी लगी, जैसे किसी अपने ने छोड़ दिया हो।
और यहाँ लेखक फिर अपनी कहानी को बीच में लाते हैं। वो खुद भी अपने शहर कोलंबस को छोड़ने के बारे में सोचते हैं, घर छोड़ने का फैसला कितना मुश्किल होता है, उसके साथ जुड़ा अपराध बोध, आज़ादी की चाहत, और ये सवाल कि अपनी जड़ों के प्रति वफादारी ज्यादा जरूरी है या अपनी महत्वाकांक्षाओं का पीछा करना। ये द्वंद इस हिस्से का दिल है।
इसके बाद आता है तीसरा क्वार्टर, विलेन का राज और दूर से मिली कामयाबी। ये लेब्रॉन के मियामी हीट में बिताए साल 2010-2014 है। देश भर में कई फैंस के लिए वो विलेन बन गए थे।
हाँ, बन गए थे।
लेकिन उन्होंने मियामी में वो चैंपियनशिप्स जीती जो क्लीवलैंड में नहीं जीत पाए थे।
यहाँ अब्दुल रकीब एक छोड़े हुए फैन के नजरिए से पूछते हैं, जब आपका हीरो कहीं और जाकर सफल हो तो इस सफलता का आपके लिए क्या मतलब है, क्या आप उसके लिए खुश हो सकते हैं? लेकिन वो ये भी देखते हैं कि कैसे लेब्रॉन इस नफरत और दबाव के बीच एक खिलाड़ी और इंसान के तौर पर और मजबूत हुए।
और लेखक के लिए वो वक्त था जब वो घर से दूर एक लेखक के तौर पर अपनी पहचान बना रहे थे। वो इस देश निकाले जैसे अनुभव से सीखते हैं, दूर से अपने घर को, अपनी जड़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हिस्सा दिखाता है कि कभी कभी दूरी हमें एक नया नजरिया देती है और कामयाबी हमेशा आसान रास्ते से नहीं मिलती।
फिर आता है क्लाइमैक्स, चौथा क्वार्टर, वापसी और वादे का पूरा होना। 2014 में लेब्रॉन जेम्स वापस क्लीवलैंड लौटते हैं और 2016 में वो कर दिखाते हैं जिसका ओहायो 50 साल से ज्यादा से इंतजार कर रहा था, क्लीवलैंड कैवेलियर्स को NBA चैंपियनशिप जिताते हैं।
हाँ, और वो भी फाइनल में 3-1 से पिछड़ने के बाद। हाँ। क्या करिश्माई वापसी थी। अब्दुल रकीब इसे सिर्फ एक स्पोर्ट्स जीत की तरह नहीं देखते, वो इसे एक शहर की मुक्ति, दशकों की निराशा के अंत और एक वादे के पूरा होने के रूप में देखते हैं। वो घर वापसी की मुश्किल और अंततः सफल यात्रा का प्रतीक बन जाता है।
हाँ, पूरे शहर का जश्न मनाना, वो एहसास कि आखिरकार सपना पूरा हुआ।
लेखक इस जीत को अपने शहर कोलंबस के साथ अपने बदलते रिश्ते से जोड़ते हैं। घर वापस आने और उसे नई नजरों से देखने का क्या मतलब है? यह हिस्सा माफी, विरासत और उन वादों के बारे में है जो शायद देर से पूरे हों पर मायने रखते हैं।
और आखिर में पोस्ट गेम, विरासत और यादें। चैंपियनशिप जीतने के बाद क्या? लेब्रॉन का करियर आगे बढ़ता है, वो लॉस एंजलिस लेकर्स जाते हैं, एक बड़े सामाजिक आवाज बनते हैं। अब फोकस तात्कालिक जीत हार से हटकर इस बात पर आ जाता है कि पीछे क्या रह जाएगा, विरासत क्या होगी। अब्दुल रकीब यरारम वक्त बीतने पर, खिलाड़ियों के शरीर के ढलने पर, मौत पर सोचते हैं। कैसे हमारे हीरो की कहानियां हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों का हिस्सा बन जाती हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं।
सही, ये कहानियां इसलिए अहम हैं क्योंकि ये हमें हमारी अपनी जिंदगी, हमारे अपने वक्त को समझने में मदद करती हैं।
तो ये थी किताब की कहानी कहने की शैली। अब अगर हम इसके कुछ बड़े संदेशों या थीम्स पर बात करें, पहला और शायद सबसे अहम है उम्मीद का चक्र और नयापन। वही अगला साल हमेशा होता वाली बात।
हाँ, ये कि हार और निराशा के बावजूद इंसान में उम्मीद बनाए रखने की गजब की क्षमता होती है। ये चीज समुदायों को, खासकर उन्हें जो मुश्किल हालात में जी रहे हैं, टिके रहने और विश्वास बनाए रखने में मदद करती है।
सोचो जरा, जैसे भारत में क्रिकेट फैंस हैं, वर्ल्ड कप हारने के बाद कितना दुख होता है, पर अगली सीरीज आते ही फिर वही जोश, वही उम्मीद। ये वही चक्रीय उम्मीद है जिसकी बात अब्दुल रकीब कर रहे हैं।
बिल्कुल। दूसरी बड़ी थीम है घर, जगह और उम्मीद का भूगोल, यानी हमारा जन्म स्थान, हमारा शहर या गांव, हमारी पहचान और हमारी महत्वाकांक्षाओं को कैसे शक्ल देता है। किताब ओहायो और कोलंबस के जरिए दिखाती है कि घर छोड़ना और लौटना कितना भावनात्मक और उलझा हुआ हो सकता है।
ये हमारे यहाँ भी कितना सच है। कितने लोग काम या बेहतर जिंदगी के लिए अपना घर गाँव छोड़ते हैं और फिर उनके मन में हमेशा एक कसक रहती है, घर की याद सताती है। और जो बाहर जाकर कामयाब होते हैं, उनके प्रति घरवालों की उम्मीदें और भावनाएं भी मिली जुली होती हैं।
सही बात है। तीसरा थीम है सफलता, एसेंशन और उसका बोझ। किताब कहती है कि सफलता सिर्फ ऊपर चढ़ना नहीं है, इसके साथ अक्सर अकेलेपन का एहसास, लोगों की लगातार स्क्रूटनी,
हाँ वो जांच परख,
खासकर अमेरिका में अश्वेत पुरुषों के लिए, और अपने अतीत से एक दूरी बन जाने का बोझ भी आता है। लिब्रॉन पर पूरे शहर की उम्मीदों का जो पहाड़ था, वो इसका सबूत है।
हम भी देखते हैं कि जो लोग कामयाब होते हैं, उन पर उनके परिवार, उनके समुदाय की कितनी अपेक्षाएं होती हैं, कितना दबाव होता है।
चौथा है समुदाय का बनना और पहचान। खेल कैसे लोगों को जोड़ता है, कैसे एक साझा पहचान बनाता है, खासकर उन जगहों पर जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हों या जिन्हें लगता हो कि उनकी कोई सुनता नहीं। अपनी टीम के लिए चीयर करना एक साझा खुशी या गम बन जाता है जो लोगों को करीब लाता है।
जैसे हमारे यहाँ कोई त्योहार हो या गली क्रिकेट का मैच, कैसे पूरा मोहल्ला या गांव एक हो जाता है, वो भी तो एक समुदाय की भावना ही है।
बिल्कुल। और पांचवा थीम जो अमेरिकी समाज के लिए बहुत जरूरी है, वो है नस्ल और खेल में कामयाबी। किताब अमेरिका में बास्केटबॉल और अश्वेत पहचान के उलझे हुए रिश्ते को देखती है। कैसे अश्वेत खिलाड़ियों को उम्मीदों, पुराने ढर्रों, मतलब स्टीरियोटाइप्स और मौकों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ती है। वो अक्सर सिर्फ खिलाड़ी नहीं होते, अपने समुदाय के प्रतीक भी बन जाते हैं।
ये याद दिलाता है कि खेल कभी भी समाज और राजनीति से अछूता नहीं होता।
सही कहा। इस किताब में कई ऐसी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं। कुछ पर बात करें। एक है अगला साल हमेशा होता है का वादा, खेल और जीवन का सबसे बड़ा सुकून भी है और सबसे बड़ा वहम भी है।
मतलब ये उम्मीद हमें निराशा से उभरने में मदद तो करती है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि अगला साल बेहतर ही होगा। फिर भी हम उम्मीद करते हैं क्योंकि शायद इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है।
एक और गहरी बात है, अपने शहर का हीरो एक आईने की तरह होता है जिसमें शहर अपनी सबसे बड़ी उम्मीदें देखता है। जब वो आईना हटा दिया जाता है तो शहर को डर लगता है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देगा।
ये दिखाता है कि लेब्रॉन जैसे हीरो पर समुदाय कितना निर्भर हो जाता है। जब लेब्रॉन क्लीवलैंड छोड़कर गए तो शहर को लगा जैसे उनका अपना अक्स ही टूट गया हो। ये उस गहरे भावनात्मक बंधन की बात है।
एक और बात सफलता की कीमत पर। ऊपर उठने का मतलब है कि आप जहां से शुरू हुए थे उससे दूर चले जाना है, और शिखर से दिखने वाले नज़ारे की कीमत एक ऐसी दूरी है जिसे आप फिर कभी पूरी तरह से पाट नहीं सकते।
वाह, ये सफलता के साथ आने वाले अकेलेपन और जड़ों से कट जाने की भावना को कितनी खूबसूरती से कहता है। कामयाबी आपको बदल देती है और आपके और आपके अतीत के बीच एक फासला बना देती है जिसे भरना नामुमकिन सा हो जाता है।
और आखिर में ये खेल हमसे नामुमकिन चीजों में यकीन करने को कहता है और फिर कभी कभी उन्हें मुमकिन बना भी देता है।
ये खेल का जादू है, जहां उम्मीदें हकीकत बन सकती हैं, जहां करिश्मे होते हैं। ये खेल को एक तरह का विश्वास या आस्था बना देता है, धर्म से परे। ये बातें याद दिलाती हैं कि खेल सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये जिंदगी को समझने का एक नजरिया भी दे सकता है।
तो अब सवाल ये है कि इन सब बातों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है, हम इन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। निजी तौर पर देखें तो ये किताब हमें जिंदगी में उम्मीद और निराशा के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है।
हाँ।
नाकामयाबी को जिंदगी का हिस्सा मानकर उससे सीखकर आगे बढ़ना सिखा सकती है।
हाँ, और समुदाय के स्तर पर यह हमें समझा सकती है कि कैसे साझा अनुभव, चाहे वो खुशी के हों या दुख के, और एक दूसरे के प्रति वफादारी मजबूत रिश्ते और समुदाय बनाते हैं। हम अपने आसपास देख सकते हैं कि कैसे लोग किसी टीम, किसी मुद्दे या किसी पहचान के जरिए एक दूसरे से जुड़ते हैं।
महत्वाकांक्षा और सफलता की बात करें तो ये हमें कामयाबी को सिर्फ पैसे या शोहरत से आगे बढ़कर देखने में मदद कर सकती है। कामयाबी की कीमत क्या होती है, उसके साथ क्या जिम्मेदारियां आती हैं, इन पर सोचना जरूरी है।
ये हमें अपने घर, अपनी जड़ों के साथ अपने रिश्ते पर सोचने का मौका भी देती है। हम अपनी जड़ों से कितना जुड़े हैं, कितना दूर हैं, और इस रिश्ते के हमारे लिए क्या मायने हैं।
और आखिर में ये हमें सिखाती है कि पॉपुलर कल्चर जैसे कि खेल, फिल्में या संगीत में भी गहरे मतलब छुपे हो सकते हैं। चीजों को सिर्फ सतह पर देखने के बजाय उनके पीछे की कहानियों और संदेशों को समझने की कोशिश करना।
अगर मुझसे पूछें कि इस किताब से मुझे सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला या क्या बात चौंका गई, तो वो शायद यही है कि अब्दुल रकीब ने बास्केटबॉल जैसी चीज के जरिए घर, उम्मीद, समुदाय और इंसान की भावनाओं को कितनी गहराई और खूबसूरती से पिरोया है। ये किताब लेब्रॉन जेम्स के बारे में उतनी नहीं है जितनी हम सबके बारे में है।
और मेरे लिए अब्दुल रकीब का लिखने का अंदाज सबसे खास है। कैसे वो अपनी यादों, बास्केटबॉल के पलों और समाज पर अपनी टिप्पणियों को एक साथ मिला देते हैं। और हाँ, वो उम्मीद का संदेश कि चाहे कितनी भी निराशा हो, अगला साल फिर आएगा वाली भावना हमें आगे बढ़ाती है। शायद यही जिंदगी है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।